मंगलाचरण करते हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं।
आज थोड़ा हिंदी भाइयों से, तो आज हिंदी में क्लास लेंगे। देखिए, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ये पुस्तक में 6 अलग अलग अध्याय है। पहले भाग में उसमें पहले 3 द्रव्य गुण पर्याय, फिर 4 अभाव, 6 कारक और निमित्त उपादान। मेरे ख्याल से इसमें प्रकरण इसमें आते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें से हम सबसे पहला जो द्रव्य अधिकार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः जब हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ते हैं तो विश्व से शुरू करते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। फिर द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सर्व भागों में और उनकी सर्व अवस्थाओं में हो उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विशेष कार्य को या वर्तमान अवस्था को पर्याय कहते हैं। ठीक है, इतना तो हम देखते हैं। तो यहाँ हम ये द्रव्य अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अगला अपना दूसरा गुण अधिकार आने वाला है। उसमें भी आपने सामान्य चर्चा तो सुनी ही होगी। गुण के 2 प्रकार है, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण में 6 प्रकार के सामान्य गुणों की सामान्य चर्चा आती है। वैसे तो सामान्य गुण अनेक है, वैसे ही विशेष गुण भी अनेक है, लेकिन उसमें चेतना गुण, श्रद्धा, ज्ञान आदि की चर्चा आती है। अभी द्रव्य अधिकार के अंतर्गत हमने बहुत सारी सामान्य चीजें तो ऑलरेडी देख ली है। जैसे द्रव्य कितने होते हैं, तो वैसे तो विश्व में अनंत द्रव्य है, लेकिन 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन से 6 होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो विश्व में जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, फिर किनका कितना बड़ा आकार होता है, किन किन के क्या क्या गुण हैं, सामान्य गुण जो उनके लक्षण हैं, ये सब सामान्य चर्चा हमारी हो चुकी। अभी हम ये द्रव्य अधिकार के एकदम अंतिम प्रकरण में आज है, शायद आज ही अधिकार पूरा होगा। पिछले 2-3 क्लास से हमारी चर्चा चल रही है कि द्रव्य का लक्षण क्या है। ये थोड़ा और रिवीजन ले लेते हैं, फिर आज के विषय में आगे बढ़ेंगे। पहले तो अर्थ। अर्थ क्या है? द्रव्य, गुण और पर्याय, इसके समूह को अर्थ भी कहने में आता है। ठीक है, जो जिसे हम प्रमाण का द्रव्य कहते हैं, सुना होगा आपने प्रमाण का द्रव्य। ये है दृष्टि का द्रव्य, ये है प्रमाण का द्रव्य। ठीक है, तो प्रमाण के द्रव्य को अर्थ कहते हैं। यहाँ तो कहने का एंगल थोड़ा अलग है। मास्टर समझाए जनक? हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि गुण जो है वो कोई अन्य पदार्थ नहीं है, वो द्रव्य की ही विशेषताएं हैं, बराबर है। और पर्याय भी कोई अन्य पदार्थ नहीं है, वो द्रव्य की ही वर्तमान अवस्था है। ठीक है, तो अर्थ का लक्षण क्या है कि द्रव्य और अर्थ एक समानार्थी है, या फिर उसका लक्षण भी द्रव्य है, ऐसा कह सकते हैं। इतना ख्याल में आता है, अर्थ का लक्षण द्रव्य है, क्योंकि गुण और पर्याय कोई अन्य पदार्थ नहीं है, द्रव्य की ही विशेषता है। अच्छा, अभी द्रव्य का लक्षण क्या है? जैसे सामान्यतः अगर हम कहें जीव द्रव्य का लक्षण क्या है, तो क्या कहेंगे? तो चेतना वो जीव का लक्षण है। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। लेकिन द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या है? नहीं, सत द्रव्य लक्षण। ये आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, सत द्रव्य लक्षण। मतलब कि द्रव्य का लक्षण सत, सत मतलब अस्तित्व, द्रव्य का हयात होना। विश्व में जितने जितने पदार्थ है उसे द्रव्य कहने में आता है, जो है ही नहीं उसे द्रव्य कहेंगे तो उसे द्रव्य नहीं कहेंगे। तो जहाँ जहाँ कोई पदार्थ है उसकी मौजूदगी है उसे द्रव्य कहने में आता है। तो सत मतलब अस्तित्व पना वो द्रव्य का लक्षण है। यहाँ पे सामान्य द्रव्य की बात चल रही है, जीव है पुद्गल है ऐसी विशेषताओं में नहीं जाएंगे, एक द्रव्य सामान्य। ये प्रवचन सार ग्रंथ नंबर 101 चल रही है। तो वहाँ पे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंदर एक द्रव्य सामान्य अधिकार है, ये द्रव्य सामान्य की बात चल रही है। मतलब कि इन जनरल द्रव्य का लक्षण क्या है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व सत, वो द्रव्य का लक्षण है। अभी सत का लक्षण क्या है, सत का लक्षण क्या है, वापस तत्व सूत्र विचार करिए। આપણું તો કેટલી વાર થઈ ગયું છે તો યાદ હોવું જોઈએ, હા વેરી ગુડ, ઉત્પાદ વ્યય ઓર દ્રવ્ય, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય એકદમ સત, મતલબ સત કા લક્ષણ ક્યા હૈ, મતલબ વિશ્વ મેં જો જો પદાર્થ હૈ तो उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव होना कंपलसरी है। ठीक है, इसकी हमारी चर्चा बहुत डिटेल में हो चुकी है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उत्पाद किसे कहते हैं, एक नई अवस्था का उत्पन्न होना। पदार्थ तो उत्पन्न नहीं होता, उनकी अवस्थाएं उत्पन्न होती है। पदार्थ तो अनादि अनंत है ना, तो उसकी वर्तमान नई अवस्था का उत्पन्न होना उसे कहते हैं उत्पाद। व्यय किसे कहते हैं, पुरानी अवस्था का नाश हो जाना या फिर चले जाना, व्यय होना, उसे व्यय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं, कि द्रव्य का वो पर्याय के प्रवाह क्रम में कायम रहना। जैसे आज हम एक एग्जांपल देखेंगे, श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन का उत्पाद, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होना, वो है उत्पाद। मिथ्या दर्शन का नाश होना तो वो है व्यय। और श्रद्धा गुण का पर्याय में प्रवाह क्रम में श्रद्धा 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 होना वो है। ठीक है, ये सामान्य अपनी चर्चा होगी। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसी सिद्धांत में से कैसे जैन धर्म के अनेक महत्व के सिद्धांत उभर के आते हैं। तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, हम पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 में है, 60-61 द्रव्य अधिकार। कौन कौन से सिद्धांत इसमें से निकलते हैं, सबसे पहला द्रव्य में नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है और वो कायम एक टिकना भी होता है। तो द्रव्य में एक क्षणिक भाग है और एक कायम टिकने वाला भाग, मतलब एट द सेम टाइम द्रव्य क्षणिक भी है और नित्य भी है, तो इससे वस्तु का अनेकांत स्वभाव सिद्ध होता है। अनेकांत वस्तु स्वरूप को समझाने वाली वाणी को क्या कहते हैं, श्यादवाद, मतलब कि कोई एक एंगल से समझाना उसे कहते हैं श्याद। श्याद मतलब कोई एक एंगल से, वाद मतलब समझाना। तो अनेकांत वस्तु को समझाने के लिए श्यादवाद रूप जिनवाणी में कथन आता है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, हर एक पदार्थ में उसके प्रवाह क्रम में उत्पाद ये निरंतर चालू ही रहते हैं। कौन से गुण के कारण द्रव्य में परिणमन होता है, कौन से गुण के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, द्रव्यत्व गुण, वेरी गुड, द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो अगर निरंतर बदलती रहती है अवस्थाएं, तो हर एक समय नई नई अवस्था का उत्पाद होता है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि ऐसा क्रम चालू रहता है। हमने ये भी देखा था कि अगर उत्पाद व्यय ना हो तो क्या होगा, तो द्रव्य केवल ध्रुव रह जाएगा, तो अशुद्ध अवस्था है अशुद्ध ही रह जाएगी, कुटस्थ हो जाएगा। जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही रहेगा, जो शुद्ध है वो शुद्ध ही रहेंगे, कभी कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और सिर्फ उत्पाद व्यय माना जाए, ध्रुव ना माना जाए तो क्या होगा, तो द्रव्य कायम क्षणिक ही हो जाएगा, ठीक है ना। बस पर्याय बदलती रहेगी लेकिन उसमें कोई सामान्य धारा नहीं रहेगी। तो मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पर्याय में मैं नहीं हूँ, कोई और ही है, तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। तो हर एक पदार्थ में ये दोनों पार्ट होना कंपलसरी है, और हर एक पर्याय में नया नया उत्पाद और पुराना पुराना व्यय, ये निरंतर चलता रहता है। फिर प्रवचन सार की 99 गाथा में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मोती की माला, मोती की माला में ऐसे, उसमें उदाहरण भी ऐसे दिया है कि आपने वर्टिकल लटकाई है, हाँ, तो जैसे नीचे से ऊपर आते समय एक मोती क्रॉस किया और दूसरे मोती पे आप आए, तो नए मोती का उत्पाद हुआ, पुराने मोती का व्यय हुआ, और बीच में ये जो धागे से वो परस्पर बंधे हुए हैं, इसलिए वो प्रवाह क्रम में द्रव्य रूप से है। फिर उसको आकाश के प्रदेश के साथ तुलना करते हैं, तो हमने क्या देखा था, हमने एक आत्मा को देखा था कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा होते हैं ना। अभी असंख्यात प्रदेश में अगर आपने आकाश के प्रदेशों को गिनना चालू किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्रम सर गिनना पड़ता है ना, कि पहला प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश। जैसे आकाश में प्रदेशों का एक क्रम निश्चित है, कोई यहाँ से यहाँ आगे पीछे नहीं होते, मोती की माला में एक प्रवाह क्रम निश्चित है, पहले ये मोती फिर सीधा ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ऐसा आड़ा टेढ़ा कभी नहीं होता। वैसे ही हरेक द्रव्य की पर्याय में उत्पाद व्यय का जो प्रवाह क्रम है वो निश्चित है, कि हरेक समय नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, और द्रव्य कायम टिके रह के आगे नई पर्याय का उत्पाद होता है। अभी हमारे आज के टॉपिक में आएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। हमने क्या देखा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन सिर्फ गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते, पर्यायों के समूह को भी द्रव्य कहते हैं। तो ये जो तीनों काल की पर्याय का एक प्रवाह क्रम है, उसका एक घन स्वरूप बना लो कि गुण कैसे है, एक विस्तार सामान्य है, सुना है शब्द विस्तार सामान्य और प्रवाह। आपने बीच में एक एग्जांपल से देखा था कि जैसे कपड़ा होता है, वो कपड़े में कोई भी एक जगह देखोगे तो बहुत सारे तार वर्टिकल होंगे, और अगर आपने एक तार में देखा तो बहुत सारे तार हॉरिजॉन्टल होते हैं।
कपड़ा किसे कहते हैं,
वर्टिकल तारों के समूह को या हॉरिजॉन्टल तार के समूह को, दोनों को, बराबर है ना। तो समझो कि ये सब जीव के अनंत गुण है। तो एक पर्याय में अगर देखेंगे तो हरेक जीव में या फिर हरेक द्रव्य में एक समय में अनंत गुण की पर्याय होती है, अनंत गुण विराजमान। लेकिन कोई एक गुण आपने ले लिया तो उसके प्रवाह क्रम में अनादिकाल से अनंत का अनंत पर्याय विराजमान है। तो द्रव्य क्या है, सिर्फ गुणों का समूह नहीं है, गुण पर्यायों का समूह है, वो आज अपने उसमें आएगा। यहाँ पे क्या बात चल रही थी, कि जैसे मोती की माला एक एक क्रम में आती है, जैसे यहाँ पर्याय एक एक क्रम में आती है, तो वो क्रम में आने की वजह से पर्यायों का क्रम निश्चित है। पर्यायों का क्रम निश्चित मतलब क्या है कि हरेक द्रव्य अपनी क्रम सर पर्याय अनुसार ही परिणमित होता है, इससे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सिद्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि क्योंकि हरेक द्रव्य अपने उत्पाद व्यय में ही निरंतर रहता है, अपने उत्पाद व्यय रूप ही निरंतर परिणमित होते हुए ध्रुव रहता है, तो द्रव्य हमेशा अपने ही स्वभाव में रहता है। अपने ही स्वभाव में रहता है मतलब क्या कि द्रव्य हमेशा अपने त्रिलक्षण रूप, ये इसमें शब्द ऐसा आता है कि हरेक द्रव्य त्रिलक्षण परिणाम को स्पर्श करता हुआ अपने ही स्वभाव में रहता है। मतलब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य करता नहीं है, क्योंकि अगर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कार्य करना हो तो उसे एक साथ दो उत्पाद करने होंगे, एक तो अपना स्वयं का स्वयं की पर्याय का उत्पाद करना होगा और दूसरों की पर्याय का उत्पाद करना होगा, जो कि शक्य नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। और दूसरे द्रव्य की क्या सिचुएशन होगी कि उसको वो पर्टिकुलर पर्याय में जीरो उत्पाद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका उत्पाद तो उसने कर लिया, तो वो भी शक्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ये पर्याय का प्रवाह क्रम टूटता है। ठीक है, अगर पर्याय का प्रवाह क्रम टूटता है तो जैसे मोती की माला टूटने से मोती ही बिखर जाते हैं तो द्रव्य ही नष्ट हो जाता है, ख्याल में आता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था कि एक समझने की पद्धति क्या है कि एक मोती से दूसरे मोती पे गए तो इसका व्यय, इसका उत्पाद और प्रवाह क्रम में वो मोती की स्थिरता, मतलब कि वो द्रव्य की स्थिरता मतलब ध्रुवता। दूसरे एंगल से समझने की पद्धति क्या है कि अगर यही मोती को हम देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन में इसका उत्पाद, नीचे वाले की कंपैरिजन में ये मोती का उत्पाद, ऊपर वाले की कंपैरिजन में ये मोती का व्यय, और अपने प्रवाह क्रम में वो जो मोती जहाँ है एक समय के लिए वहाँ ही स्थित है तो वो ही उसकी ध्रुवता। तो पूरे द्रव्य में तो उत्पाद व्यय ध्रुव लगा सकते हैं, एक पर्याय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव लगा सकते हैं। तो हरेक पर्याय कैसी है कि हरेक पर्याय त्रिलक्षण परिणाम को स्पर्शती अपने ही स्वभाव में रहती है। मतलब क्या कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ कर सकता नहीं, ख्याल में आता है। ये कितना सिग्निफिकेंट ये सब सिद्धांत है कि एक पर्याय अगर दूसरी पर्याय का कुछ कर ना सके तो मैं मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय कैसे लेके आऊं, ख्याल में आता है। अगर ये मैं शास्त्र अभी पढ़ रहा हूँ तो वो समझने की पर्याय मैं कैसे लेके आऊं, मैं जीव द्रव्य हूँ। देखिए बातें कौन सी चल रही है, एकदम उत्कृष्ट बातें चल रही है, तो यहाँ नीचे वाली बातें मत लेके आइए। स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट विद दैट अंडरस्टूड आई एम सेइंग समथिंग फर्दर कि जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आना वो अपने हाथ की बात है कि नहीं, ख्याल आवे ने माता। अपने स्वाध्याय करिए थे, स्वाध्याय करवो ये जीवनी पर्याय ना क्रम आवे, पर जे समय जीव ने समझावानू छे एक समय समझाए, जीव को जिस समय में समझना होगा वही समय में उसकी पर्याय की योग्यता से वो समझ में आता है। क्या कोई विद्वान अपने को समझा देते हैं, नहीं समझा सकते। कोई शास्त्र अपने को समझा सकता है, जिनेंद्र भगवान अपने को समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते। समझ में आ रहा है, द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता तो है, पर्याय की भी उतनी स्वतंत्रता है। इसलिए गुरुदेव जी क्या कहते थे, जैन धर्म मतलब स्वतंत्रता नो ढंडेरो, कि विश्व में हर एक चीज ख्याल में आता है आगे एक पर्याय पे लगा जी ठीक है। तो अभी आज अपना टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इतना देख लिया
तो आगे 62 नंबर का क्वेश्चन,
आगे 62 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 21। अभी प्रश्न पूछता है कि आपने बताया कि अर्थ का लक्षण द्रव्य, द्रव्य का लक्षण सत, सत का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव। वैसे ही पर्याय में अगर उत्पाद व्यय ध्रुव है तो पर्याय भी सत है, तो पर्याय स्वयं सिद्ध है, अपना अस्तित्व उसका स्वयं सिद्ध है। अभी इसका प्रश्न यहाँ ये पूछते हैं कि ये सत उत्पाद व्यय द्रव्य ये त्रयात्मक है, ये सब समझ के आध्यात्मिक रहस्य क्या निकलता है, क्या फायदा ये सब समझ के, यहाँ ऐसा प्रश्न पूछते हैं। टेक्स्ट तो गुजराती में है, मैं गुजराती पढ़ता हूँ। दरेक द्रव्य एक समय में पोताना उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रि स्वभाव ने स्पर्शे, हरेक द्रव्य हरेक समय में उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रि स्वभाव ऐसे स्वभाव को स्पर्शता है। एज वक्ते निमित्तो होवा छता द्रव्य तेने स्पर्शतु नथी, कि वही समय निमित्त भी है लेकिन निमित्त अपने त्रि स्वभाव को स्पर्शता है और ये द्रव्य अपने त्रि स्वभाव को स्पर्शता है। पहले तो एक सामान्य निमित्त उपादान क्या है सबको पता है, एक सामान्य पहले चर्चा देते हैं। देखिए ये चौक है, ये चौक यहाँ पड़ा है, ये मैंने तो कार्य क्या हुआ कि चौक को उठाया, चौक को उठाया, ये यहाँ पे कार्य हुआ। एक्शन एनी एक्शन विल ऑलवेज हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है। तो इन दिस एक्शन ये क्रिया में सब्जेक्ट कौन है और बाकी की चीजें क्या है, ये अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। आज ये जो चौक उठाने की क्रिया हुई तो उसमें चौक के ही परमाणु अपने आप स्वयं अपनी योग्यता से ये यहाँ से यहाँ उठे। इवन वाइल एक्सप्लेनिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग ये कितनी बार मैंने ऊपर नीचे किया, ये मैंने डिसाइड किया था पहले नहीं किया था ना, तो वो अपने आप जो क्रिया होनी है वो समय में वैसी ही क्रियाएं होती है। ठीक है, अभी लौकिक उपचार से एक लौकिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऐसा आरोप देने में आता है कि भाई मैंने ये चौक उठाया। ठीक है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं लोग, अभी किसने उठाया कोई क्वेश्चन पूछेगा तो समझाने के लिए ऐसा कहने में आता है कि मैंने उठाया। लेकिन जब परमाणु एक द्रव्य के सन्मुख जाके देखते हैं, द्रव्य के समीप जाके देखने से मैं कौन, यहाँ पे मैं कौन, क्योंकि मैं तो जीव हूँ, ये शरीर के अनंत अनंत परमाणु है, यहीं पे कारमान वर्गना तेजस वर्गना आदि अनंत परमाणु हैं, ये पुद्गल में भी चौक में भी अनंत परमाणु होंगे शायद, या असंख्यात होंगे जितने भी है। तो अगर मैंने चौक को उठाया तो जीव ने किस परमाणु को उठाया, ख्याल में आता है, जीव तो एक परमाणु को भी उठा नहीं सकता, तो जीव ने क्या किया, जीव ने विचार किया, विकल्प किया कि भाई मुझे ये चौक को उठाना है। इतना विकल्प तो जीव के कार्य क्षेत्र में आता है, वो जीव की बाउंड्री में आता है।
थोड़ा
था। तो जीव ने क्या किया, जीव ने तो एक विकल्प किया कि मुझे ये जॉब उठाना है, वो तो जीव की बाउंड्री में है कार्य। उसके बाद जो कार्य हुआ कि ये उंगली के जो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है उनका हिलना, ये चौक के परमाणुओं का हिलना, ये सब अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होते हैं। वाइल्ड रियलिटी इज दिस, अगर ये सिचुएशन हम लौकिक भाषा में बोलना चालू कर देंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, करेक्ट। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, एक समाज में एक प्रथा बन गई है कि सिर्फ ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, वो एक उपचार करने की ख्याल में आता है। वास्तव में हमने क्या देखा, एक पर्याय भी स्वतंत्र है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन समाज की व्यवस्था बनाने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है ऐसा आरोप देने में आता है। तो जब ये व्यवस्था करते हैं तो समझो ये चौक के उठाने की क्रिया जो हुई, तो वो क्रिया में चौक के परमाणु का स्वतंत्र उठना तो उसको उपादान कहने में आता है। जो द्रव्य स्वतंत्र स्वयं क्रियारूप परिणाम है उसे उपादान कहने में आता है, ठीक है। और जो द्रव्य पे अनुकूल होने का आरोप देने में आता है उसे निमित्त कहते हैं। इतना डेफिनेशन आपको क्लियर है? जैसे ये मैंने उठाया तो कुछ को निमित्त कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? वो यहाँ मौजूद है फिर भी वो अनुकूल नहीं है। ये अनुकूल मतलब कि ये क्रिया होने में सपोर्टिव कौन है, कि भाई मैं, तो आरोप मुझी पे आता है, क्लियर। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक कार्य में निमित्त अनेक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टेबल भी निमित्त है, क्यों निमित्त है, क्योंकि चौक पहले वहां पड़ा था, ठीक है। ये हवा भी निमित्त है, क्यों निमित्त है, क्योंकि हवा है तो चौक मूव हुआ, अगर दीवार होती तो चौक मूव होता, अंदर नहीं होता, ख्याल में आती है। तो कोई एक कार्य में निमित्त अनेक हो सकते हैं लेकिन उपादान हमेशा एक ही होता है। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट यहाँ पे क्या कहने में आ रहा है कि ऐसी विश्व में समाज में निमित्त उपादान व्यवस्था होने पर भी जब कार्य होता है तो हरेक पर्याय स्वतंत्र अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रिलक्षण परिणाम को स्पर्शती हुई अपना कार्य स्वतंत्र करती है। वहीं पे निमित्त के भी पर्याय चालू है, एक पर्याय का दूसरे पर्याय पे आरोप देने में आता है लौकिक उपचार, लेकिन वास्तव में एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ कर सकती नहीं। समझ में आया सबको?
समझ में आया।
दरेक द्रव्य एक समय में पोताना उत्पाद ये ध्रुव रूप त्रण त्रि स्वभाव ने स्पर्शे है, तेमज तेज वक्ते निमित्तो होवा छता द्रव्य तेने स्पर्शतुज नथी। स्पर्श तो नहीं मतलब कि टच नहीं, यहाँ पे टच की बात नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता उसे ऐसा कहने में आता है कि स्पर्श। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता उसी को ऐसी भाषा में कहने में आता है कि वो स्पर्शता है। जैसे गुरुदेव जी बहुत एग्जांपल देते थे कि बाई रोटी बनाती नहीं, गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई सोनगढ़ की गाड़ी है वो पेट्रोल के बिना चलती है, बाकी जगह गाड़ी पेट्रोल से चलती है। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है कि कौन से एंगल से बात की गई है। लौकिक उपचार से कहोगे तो हाँ गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है, लेकिन पारमार्थिक बात करने पर गाड़ी भी एक द्रव्य थोड़ी है, अनेक द्रव्य का समूह है, पेट्रोल भी अनेक द्रव्य का समूह है। तो किस द्रव्य ने किस द्रव्य का कार्य किया, समझ में आता है। हर एक द्रव्य अपने अपने पर्याय में अपना अपना कार्य करता है। सम्यक दर्शन कहू क्या, सम्यक दर्शन न उत्पाद ने मिथ्यात्व न व्यय ने अने श्रद्धापणे पोतानी ध्रुवता ने आत्मा स्पर्शे। क्या हो रहा है कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद और आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय होने से वो आत्मा को उसकी उपलब्धि, मतलब आत्मा उसको स्पर्शता है। जब अलग अलग पर्याय में अप्लाई करेंगे तो ध्रुव आत्मा को लगाएंगे ना, और जब पर्याय में अप्लाई करेंगे तो सम्यक दर्शन की पर्याय उसका ही उत्पाद, अगली पर्याय के हिसाब से उसका व्यय, और वो पर्याय अपने कालक्रम में जहाँ स्थित थी वहाँ वो ध्रुव। ठीक है, समझ रहे हैं? सम्यक तो ना निमित्त भूत देव शास्त्र गुरु आत्मा ने स्पर्शता नहीं। देव शास्त्र गुरु आत्मा को स्पर्शते हैं तो आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकते हैं? नहीं करा सकते। लेकिन अभी वापस लौकिक उपचार में ऐसा ही कहने में आता है और ऐसा ही करना चाहिए कि भाई भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो ऐसे कोई ओकेजन भी अपने को नहीं मिलेंगे जहाँ पे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सके। लेकिन वास्तव में देव दर्शन से सम्यक दर्शन होता ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो जुदा पदार्थ, ये जुदा स्वभाव वाला पदार्थ हो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मिथ्यात्व नो व्यय श्रद्धापणा की सरंगता ध्रुवता ये त्रणे आत्मा में समाये छे, ये हमने देख लिया। ए सिवाय बीजा बाह्य निमित्त तो ते आत्मा में समाता नहीं। समय समय उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप पोता नो स्वभाव छे, के स्वभाव में द्रव्य दरेक द्रव्य स्पर्शे छे, एटले पोताना स्वभाव पणे ज वर्ते छे, पण पर द्रव्य ने कारणे कोई ना उत्पाद व्यय ध्रुवता नहीं। ये सब हमने देख लिया, इसमें फटाफट पढ़ लो। पर द्रव्य पण तेना पोताना ज उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में अनादि अनंत वर्ते छे। हरेक पदार्थ पर द्रव्य हो के स्वद्रव्य अपने उत्पाद व्यय ध्रुव में अनादि अनंत वर्तता है। हाँ, हर द्रव्य हर पर्याय। आगे बढ़िए, आत्मा पण पोताना उत्पाद व्यय ध्रुव में अनादि अनंत वर्ते छे, आवु समझनार ज्ञानी है। ये सब हमने क्यों समझा कि जो ऐसा समझता है उसको द्रव्य की स्वतंत्रता ख्याल में आती है, पर्याय की स्वतंत्रता ख्याल में आती है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता ऐसा ख्याल में आता है तो जीव निर्भर हो जाता है। खैर, अभी तो कुछ करना बचा ही है, तो करना बचा नहीं तो जो अपनी दृष्टि अनादि से पर्याय को बदलने में जा रही थी, अरे ये शरीर को मैं ये कर दूं, ये एक्सरसाइज करूं तो इससे ऐसा होगा, ये करूं तो वैसा होगा, ये दृष्टि जो अनादि से वो पर को बदलने में जा रही थी वो उससे निर्भर होके अपने द्रव्य पे आ जाती है कि अरे मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ जानना देखना है, तो बस जानता देखता रहता हूँ, वही सिर्फ जानता देखता रहता हूँ, बस यही सुख है कि उसमें अभी कुछ करने धरने का कोई भार रहा नहीं। ख्याल में आ रहा है? तो ये समझने से क्या लाभ हुआ कि ये अध्यात्म ये समझ में आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में। आवु समझनार ज्ञानी ने पोताना आत्मा ना उत्पाद व्यय ध्रुवता सिवाय बाहर मा किंचित पण कार्य पोतानु भासतु नथी। के अभी ज्ञानी को अपने उत्पाद व्यय ध्रुव सिवाय कोई पदार्थ में अपना कार्य भासता ही नहीं। एटले उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप जे पोतानो आत्मा तेना आश्रय निर्मलता नो उत्पाद थतो जाय छे, मलिनता नो व्यय थतो जाय छे अने ध्रुवता नो अवलंबन रहा करे छे, आनो नाम धर्म छे। जब किसी और का कुछ करना धरना रहा नहीं तो दृष्टि अपने स्वभाव पे आ गई, अपने स्वभाव पे आई तो वही मिथ्यात्व का नाश है और सम्यक दर्शन का उत्पाद है। ख्याल में आ रहा है? अभी अजीव द्रव्य पे लगा दे, अजीव द्रव्य पण पोताना उत्पाद वे ध्रुव रूप त्रि स्वभाव ने स्पर्शे छे, पर ने ते स्पर्शतु नथी। माटे जे माटीना घड़ा माटीना पिंड माथी घड़ो थयो तो वो घड़ा किसने किया, के माटी स्वयं वो घड़े रूप परिणमित हुई। घटनी अवस्था ना उत्पाद ने तथा माटी की ध्रुवता ने माटी स्पर्शे छे, कुंभार ने चाक ने दोरी ने के बीजा कोई पण पदार्थ ने माटी स्पर्शती नथी। अने कुंभार पण हाथ ना हलन चलन रूप पोतानी अवस्था नो जे उत्पाद थयो તે ઉત્પાદ ને સ્પર્શે છે, પણ બાહ્ય થી પણ પોતાથી બહાર એવા ઘડા ને કુંભાર સ્પર્શતો નથી. દેખી એ સમજને કી બાત હૈ કે અપને શાસ્ત્રો મેં જો ઉદાહરણ ભી આતે હૈ ના, વો ઉદાહરણ એક દેશ હોતે હૈ. અભી યહાં પે ક્યા બતાયા કે માટી કા પિંડ હૈ, વોહી ઘડે રૂપ પરિણમિત હુઆ. તો માટી અપને સ્વભાવ સે ઉસી કો સ્પર્શતી હુઈ ઘડે મેં પરિણમિત હુઈ. કુંભાર ને ક્યા કિયા કે કુંભાર અપને હાથ રૂપ ક્રિયા કો સ્પર્શતા હુઆ ઉસી રૂપ પરિણમિત હુઆ, ઉસને માટી કો છુઆ નહીં. ઠીક હૈ, એક્ઝામ્પલ અન્ડરસ્ટુડ? લેકિન એક્ઝામ્પલ એક દેશ હૈ. અભી આપ ઉસમે ફિર લગાને જાયેંગે, અરે કુંભાર તો જીવ હૈ, યે ઉસને અપને હાથ કો કૈસે સ્પર્શા. સમજ મે આતા હૈ ફિર વહાં એસા ક્રોસ કનેક્શન નહીં કરના, ક્યોંકિ અભી કુંભાર કો એક દ્રવ્ય કી ઉપમા દેખે, મતલબ વો અસમાન જાતિ જો પર્યાય હૈ કે જીવ શરીર ઉસકા પૂરા કોમ્બિનેશન વો એક દ્રવ્ય, તો વો દ્રવ્ય ને ક્યા કિયા કે વો અપને હાથ કી ક્રિયા ઉસને કી. સમજ મે આ રહા હૈ? માટી કી ક્રિયા માટી ને કી, વો ચક્ર જો હોતા હૈ ઉસકી ક્રિયા ઉસને કી, વો ડંડી જો હૈ ઉસકી ક્રિયા ઉસને કી, ક્યોંકિ અભી હમને વો કમ્બાઈન કરકે કોમ્બિનેશન એક ગ્રુપ બના દિયા. અભી વો ગ્રુપ કો ભી બ્રેક કરકે અંદર અંદર જાયેંગે. તો કુંભાર ને ક્યા કિયા કે ઉસને તો સિર્ફ વિકલ્પ કિયા કે મુજે ઘડા બનાના હૈ. તો હરેક પરમાણુ ફિર અપની અપની ક્રિયા મેં સ્વતંત્ર રૂપ પરિણમિત હુઆ, યે હાથ કે અનંત પરમાણુ અપને આપ ઘૂમે. સમજ મે આ રહા હૈ? ઓ મેટ્રિક્સ મૂવી દેખા હૈ આપને ઇંગ્લિશ મેં? તો કૈસા હુઆ, હરેક ડિજિટ યહાં યહાં કહીં અપને આપ ઘૂમતા હૈ. યે વૈસા ટાઈપ કા હૈ કે હરેક પરમાણુ યહાં યહાં ઘૂમ કે અપને આપ અપના પરિણમન કર રહા હૈ. આગે જગતમાં છ દ્રવ્ય એક જ ક્ષેત્રે રહેલા હોવા છતાં કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના સ્વભાવને સ્પર્શતું નથી. તો લોકાકાશ કે હરેક પ્રદેશ પે છ છ દ્રવ્ય, એસા કોઈ પ્રદેશ નહીં જ્યાં પે એક દ્રવ્ય. સમજ મે આ રહા હૈ? મતલબ ઇસમે હૈ કે હરેક પ્રદેશ પે સ્થિત હૈ. પુદ્ગલ તો હૈ હૈ, ધર્મ અધર્મ આકાશ ઓર કાલ ભી હૈ, લેકિન જીવ ભી હરેક પ્રદેશ પે હૈ. લેકિન હરેક પ્રદેશ પે છ દ્રવ્ય હોતે હુએ ભી એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કો સ્પર્શ. અભી સ્પર્શ કૈસે નહીં કરતા, એક હી પ્રદેશ પે તો હૈ. સમજ મે આ રહા હૈ? લેકિન યહાં સ્પર્શ મતલબ વો છૂને કી બાત નહીં હૈ, સ્પર્શ મતલબ એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કા કુછ કરતા નહીં. જો આ સર્વજ્ઞ દેવે કહેલું વિતરાગી ભેદ વિજ્ઞાન, કે સર્વજ્ઞ દેવ ભી એસી વાત કર સકતે હૈ, ઉનકે અલાવા ઓર કોઈ નહીં કર સકતા. નિમિત્ત ઉપાદાન નો ખુલાસો પણ આમાં આવી જાય છે. ઉપાદાન નિમિત્તે બંને પદાર્થો એક સાથે વર્તતા હોવા છતાં ઉપાદાન રૂપ પદાર્થ પોતાના ઉત્પાદ્ય ધ્રુવતા રૂપ સ્વભાવને સ્પર્શે છે, નિમિત્તને જરા પણ સ્પર્શતો નથી. એ અમને દેખી લીધા કે ઉપાદાન અપને ઉત્પાદ્ય ધ્રુવ કો સ્પર્શતા હૈ, નિમિત્ત અપને ઉત્પાદ્ય ધ્રુવ કો સ્પર્શતા. ચલો થોડા આગે બઢેગા, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. અહો પદાર્થો નો આ એક ઉત્પાદ્ય ધ્રુવ સ્વભાવ બરાબર ઓળખે. દેખો ક્યા બાત કર રહે, કે અભી તો હમને કોઈ દ્રવ્ય કે અંદર હમ ગયે નહીં, એક ભી ગુણો કો હમને દેખા નહીં. હમને ક્યા દેખા? એક સામાન્ય કે ભાઈ વિશ્વ મેં દ્રવ્ય, દ્રવ્યો સે વિશ્વ બના હુઆ હૈ. વો દ્રવ્ય કા લક્ષણ ક્યા હૈ કે ભાઈ ઉત્પાદ્ય ધ્રુવ. ઇતના સે સમજા તો ઉસમે સે કિતને મહાન સિદ્ધાંત બહાર આતે હૈ કે અનેકાંત ક્રમબદ્ધ પર્યાય, હરેક પર્યાય કી સ્વતંત્રતા, દ્રવ્ય કી સ્વતંત્રતા. ઇતને મહાન સિદ્ધાંત અભી ઇસમે તો કોઈ ગુરુદેવજી કહેતે થે કે જૈન ધર્મ કોઈ વાળો નથી. મતલબ કે કોઈ આપ એસા પર્ટિક્યુલર ટાઈપ સે પૂજા કરો, આપ એસી પર્ટિક્યુલર ટાઈપ સે ઉપવાસ આદિ કરો તો આપ જૈન કહેલાઓગે, એસા નહીં. વિશ્વ કા વસ્તુ સ્વરૂપ કૈસે હૈ ઉસકો સમજના વહી જૈન ધર્મ. સિર્ફ પદાર્થો કો સમજને કી કોશિશ કર રહે, સમજ મે આ રહા હૈ? દેખો યહી યહાં કહેતે હૈ કે પદાર્થો ના એક ઉત્પાદ્ય ધ્રુવ સ્વભાવ ને બરાબર ઓળખે તો ભેદ વિજ્ઞાન થઈને સ્વદ્રવ્ય ના આશ્રય નિર્મળ પર્યાય નો ઉત્પાદ થઈ જાય. એસા કહેતે ના કે તિર્યંચ કો ભી સમ્યક દર્શન હો જાતા હૈ, તો કિતને આગમ પડતે હૈ લેતે હૈ. લેકિન યે જો એક ભાવ જો એ સમજણ एक आपने कहे ना कि अंदर भाव भाषण आ वस्तु नो स्वरूप केवी रीतना छे, वो एक अंदर जो समझ में आ जाता है उतना काफी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। एक अगर वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता हमारे ख्याल में आ जाती है तो अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा एफर्ट, फोकस अपने आत्मा पे आए बिना रहता नहीं। और सम्यक दर्शन प्राप्त इतना ईजी है करना कि बस ये सिद्धांतों को समझना कंपलसरी है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, खिचड़ी हो गई, तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन सिद्धांतों को समझे तो बहुत ही आगे। आनो नाम धर्म छे ने एक सर्वज्ञ भगवान ना सर्व उपदेश नु तात्पर्य। देखिए अभी तो थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। हमने ये शुरू किया उसके पहले हमने देखा था कि द्रव्य को समझने की दो अपेक्षाएं हैं। या तो उसको उत्पाद या ध्रुव से समझ सकते हैं या उसे द्रव्य गुण पर्याय से समझ सकते हैं। अभी ये ज्यादा कॉमन है तो इसलिए ये तो हमें पता ही है। वाइल ये बुक में पहले इसको लिया है, अभी इसको ले रहे हैं, लेकिन ये हमें ज्यादातर पता ही है तो हम वापस से थोड़ा देख लेते हैं। द्रव्य नो बीजी रीते शु लक्षण छे, ये भी तत्वार सूत्र से ही है। एक एक तरफ क्या कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद द्रव्य लक्षण। अभी क्या कहते हैं कि गुण पर्यायवत द्रव्य, कि द्रव्य का दूसरा लक्षण क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय वाड़ू छे। द्रव्य कैसा है कि गुण और पर्याय वाला है। पंचाध्यायी में क्या कहते हैं कि गुण तथा पर्याय नो समुदाय समूह ते द्रव्य। गुणों का समुदाय ते द्रव्य और सम गुण पर्यायों ने युगपद इले संपूर्ण गुण पर्यायों ने द्रव्य कहे छे। जैसे हमने फैब्रिक का एग्जांपल लिया था कि अनंत गुण और अनंत पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। हमें क्या लगता है कि जीव कैसा है कि अभी मनुष्य आकार है, ठीक है, अभी अनंत गुण हमारे पास है लेकिन अभी क्षयोक्षम ज्ञान कम है आदि आदि। ये शरीर कैसा है, मतलब हमने क्या मान लिया है कि एक तो ये शरीर प्लस अपने राग द्वेष के भाव और प्लस ज्ञान की अल्पज्ञता अल्प पर्याय, तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया पदार्थ हमने उत्पन्न किया है अपने ज्ञान में। ऐसा नया पदार्थ हमने उत्पन्न किया है जिसको ये मैं हूँ ऐसा हम मानते हैं। ख्याल में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है कि मेरे में, मेरे जीव में वर्तमान में अनंत गुण तो है लेकिन अनादि काल से अनंत काल तक वो हरेक गुण की जो पर्याय भी होगी उसका भी समूह वो मैं हूँ। चलता रहा आपको? देखिए मैथमेटिक्स में हम पहले पढ़ते थे ना, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या शेप है? सर्कल, सर्कल। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता या फिर आपने कभी ड्राइंग देखा होगा तो आपने देखा होगा समझिए क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो फिर उसका फ्रंट, उसका साइड व्यू देखते हैं, उसका टॉप व्यू देखते हैं। तो फ्रंट व्यू देखने से क्या दिखता है? एक स्क्वायर दिखेगा बिकॉज दिस इज क्यूब, हर एक व्यू में सेम ही दिखेगा। लेकिन समझिए ये थोड़ा लंबा है,
तो दिखेगा
रेक्टेंगल। साइड व्यू में क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। और टॉप व्यू में वो भी रेक्टेंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अभी हम जीव द्रव्य को देखते हैं। जीव द्रव्य को देखते हैं हमारी एक एक्सिस क्या है, हमारी एक एक्सिस है टाइम और एक एक्सिस है गुण। गुण समझ में आ रहा है आपको? अभी जैसे उसमें फ्रंट व्यू हमने देखा था, इसमें पर्टिकुलर टाइम अगर व्यू देखते हैं तो क्या दिखता है? एक पूरा आत्मा दिखता है ना, जिसके अनंत गुण हमें दिखते हैं। तो एक फोटो, जैसे कोई मूवी चल रहा है और उसमें आपने एक फोटो लिया, तो एक फोटो में क्या दिखता है कि उसका एक पर्टिकुलर फ्रेम जो स्टिल हो गया वो फ्रेम दिखता है, करेक्ट? तो पूरा मूवी क्या है, ऐसे फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन है ना, राइट? वैसे ही ये एक पर्टिकुलर वर्तमान काल में मेरी जो पर्याय अभी जो दिख रही है, क्या दिख रही है कि भाई मनुष्य पर्याय है, इतना एक्स वाई जेड उसका ज्ञान का क्षयोक्षम है, उसमें भी पुरुष पर्याय है, समझ लो। ये वर्तमान का फोटो है। अभी जैसे माइक में स्टेनलेस स्टील क्या दिख रहा है वर्तमान में, कि उसका एक ये एक गॉज बना हुआ है। इसके पूर्व पर्याय में क्या था? स्टील की कोई प्लेट होगी ना, जिसमें से उसको पिघला के ऐसा वायर फ्रेम बनाई है, उसकी पूर्व पर्याय में क्या होगा? कहीं तो सॉलिड होगा, या उसके भी पहले कहीं माइन में होगा, या कहीं तो होगा ना। समझ में आ रहा है? अभी हर एक परमाणु अनादिकाल से कहाँ ट्रैवल करके आ रहा है, और वर्तमान में कहाँ पे है, भविष्य में कहाँ ट्रैवल करके जाएगा। समझो, अपने पास दिव्य ज्ञान है और हमने उसका ऐसा थ्री डायमेंशनल एक मैप बना लिया। समझ में आ रहा है? तो वो जो परमाणु है, मुझे कहना क्या है कि हम जनरली क्या मानते हैं कि वो परमाणु जो अभी दिख रहा है वो है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। वास्तव में उसके वो थ्री डायमेंशनल मैप जो है, उसका कॉम्बिनेशन वो परमाणु। द्रव्य क्या है? वो गुणों और पर्यायों का समूह है। मैं जीव, ये मैंने आई थिंक लास्ट टाइम या इससे पहले टाइम अपनी बात हुई थी कि मैं जीव हूँ, अनादिकाल से कहाँ था? निगोद में था। अनादिकाल से निगोद में था, अनंत काल के बाद कहाँ होऊंगा? तेज अवस्था में होऊंगा। तो एक पूरी एक ट्रेजेक्टरी बना लो अपनी स्वयं की, और वो पूरी ट्रेजेक्टरी में वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय भी दिखती है, लेकिन अपने आप को, जीव को ये पर्याय जितना मत मान। समझ में आ रहा है? जीव का स्वरूप कैसा है कि अनादि काल से अनंत काल तक जो अनंत पर्याय है और वर्तमान में जो अनंत गुण है, उनका एक समूह रूप हर एक द्रव्य का स्वभाव है। तो उसको आचार्य देव क्या कहते हैं? कि द्रव्य का कैसा स्वभाव है? सम गुण पर्यायवत द्रव्यम, नहीं सम गुण पर्यायो द्रव्यम, मतलब के युगपद संपूर्ण गुण और पर्यायों का समूह वो द्रव्य। ख्याल में आ रहा? अभी देखिए, इसमें और एक परिभाषा है जो हमारे लिए शायद नहीं होगी। अच्छा, आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सुना है? जैसे कोई भी द्रव्य को समझाने के लिए गुण और पर्याय रूप से उसका डिवीजन करने में आता है। द्रव्य क्या है? अनंत गुण और अनंत पर्यायों का समूह। समझो ऐसी एक घन चीज है, उसको हमको डिवाइड करना है। तो हमने एक टाइम से डिवाइड किया तो अनंत गुण दिखे, एक पर्याय से डिवाइड किया, सॉरी एक गुण से डिवाइड किया तो अनंत पर्याय दिखे, बराबर। इसको डिवाइड करने की एक और पद्धति है जिसे कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्रव्य क्या है कि इसमें वो द्रव्य जो पूरा समूह है वो द्रव्य। क्षेत्र क्या है? कि उसके असंख्यात प्रदेश अभी वर्तमान में जो जीव असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो काल क्या है टाइम बट विच टाइम कि वो अनादि अनंत काल जो है वो अनादि अनंत काल का समूह और उसमें वर्तमान पर्याय की एग्जिस्टेंस और भाव क्या है कि जीव के अनंत गुण जो है वो अनंत गुण की वर्तमान में प्रकट हो मतलब उनकी अनंत गुण की सामर्थ्य हो उनका अनंत गुण का भाव ख्याल में आ रहा है ये उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से समझाने की पद्धति है। अभी इसी को एक अलग नाम से भी कहने में आता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको कहते हैं देश देशांश गुण हाँ सॉरी ये गुणांश और ये है गुण देश देशांश गुणांश गुण एक्चुअली देश देशांश गुण गुणांश समझ में आ रहा है जैसे गुण और भाव ये तो हम एसोसिएट कर सकते हैं गुणों का एक अंश मतलब उसकी वर्तमान पर्याय मतलब वो काल देश मतलब वो पूरा द्रव्य और उसका देशांश मतलब वर्तमान में उसका क्षेत्र असंख्यात क्षेत्र देखिए पंचाध्यायी में ये अपेक्षा दी है पंचाध्यायी का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया है कि देश देशांश गुण अनेक गुणांश रूप स्वचतुष्टय ने एक साथ एक शब्द द्वारा द्रव्य कहे छे के मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसको अलग अलग समझाने की जगह पर उसके एक शब्द में अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो उसे द्रव्य कहते हैं वैसे ही देश देशांश गुण गुणांश के समूह को द्रव्य कहते हैं नहीं नहीं वो अलग ही कॉन्सेप्ट है हाँ लेकिन वो बात ही अलग है वो बात ही अलग है उसका द्रव्य के साथ संबंध नहीं वो काल गिनने की एक पद्धति है। चलिए आगे देखते हैं भेद विवक्षाती द्रव्य नु स्वरूप समझावा माटे स्वचतुष्टय नु निरूपण कर्यू छे भेद से समझाने के लिए स्वचतुष्टय का कथन किया जाता है तेने भेद विवक्षाती एक शब्द मा द्रव्य कहेवामा आवे छे और इसी को सम गुण पर्याय वो भी कहने में आता है मतलब गुण और पर्याय का समूह आप टाइम थी गये अपने अहिया स्टॉप करिए 24 ओके 5 मिनट अभी और एक परिभाषा है द्रव्यत्व योगा द्रव्यम मतलब क्या कहते हैं ये चिद विलास में आया है अर्थात द्रव्य ना संबंधी द्रव्य है हाँ द्रव्यत्व नाम इसलिए हर एक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है जो हमने अभी बात की द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है द्रव्य अपनी अवस्थाओं में निरंतर बदलता हुआ गुण और पर्याय में व्याप्ता है ये द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य अपनी अवस्थाओं में निरंतर पलटता हुआ गुणों और पर्यायों में व्याप्ता है इसलिए उसे द्रव्य संज्ञा कहने में आती है ऐसा यहाँ कहते हैं देखो द्रव्यत्व गुण ना संबंधी द्रव्य है ये पण प्रमाण है कई रीते द्रव्य गुण पर्यायों ने द्रव्य वगर द्रव्य मतलब उसमें व्यापे बिना द्रव्य न हो तेती द्रववापणु द्रव्यत्व गुणती छे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नीचे इजी समझाया है द्रव्य पोते द्रव्य स्वयं द्रवी ने मतलब पलट के चेंज होके गुण पर्याय में व्यापी ने तेने प्रकट करे छे द्रव्य स्वयं उसमें व्याप कर गुण पर्यायों को प्रकट करता है तेती गुण पर्याय नो प्रगट करवा पणो द्रव्यत्व गुण थी छे माटे इसलिए गुण पर्याय को प्रगट करना मतलब उत्पन्न नहीं करता लेकिन द्रव्य स्वयं पलट के वो रूप परिणमित होता है, मतलब वो रूप भासता है, तो इसलिए वो द्रव्यत्व गुण से उसकी संज्ञा द्रव्य कहने में आती है। द्रव्यत्व गुण की विवक्षा थी द्रव्य ना संबंधी द्रव्य छे, द्रव्य गुण पर्याय ने द्रव्य छे, गुण पर्याय ने द्रव्य ने द्रव्य छे, तेथी तेओ द्रव्य एवं नाम पामे छे। પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્ય સ્વતઃ પરિણમે છે તેથી સ્વતઃ સિદ્ધ કહેવાય છે। દ્રવ્ય અપને સ્વભાવ સે સ્વયં પરિણમતા ઇસે સ્વતઃ સિદ્ધ કહેને મે આતા હૈ, યે વો ચિદ વિલાસ સે લિયા હુઆ હૈ। દેખિયે ઇસમે અભી થોડા વિશેષાર્થ ભી હૈ, વો વિશેષાર્થ તો હમ નેક્સ્ટ ટાઈમ લેંગે। એક્ચ્યુઅલી જો હમને દેખ લિયા હૈ વોહી ઉસમે ડિટેલ મે વર્ણન હૈ, તો અગર આપ ઘર પે ભી પઢ લેંગે તો આપકો સમજ મે આ જાયેગા, ઉસમે ઓર કુછ જ્યાદા હૈ નહીં। अपने पास 2-3 मिनट है, किसी को कुछ प्रश्न है? द्रव्य द्रव्यत्व गुण के कारण अपने ही स्वभाव से परिणम के गुण पर्याय रूप प्रकट होता है, तो ये द्रव्यत्व गुण के कारण वो पदार्थ को द्रव्य संज्ञा देने में आती है। ऐसा यहाँ देखिए, द्रव्य के अनेक नाम है ना, द्रव्य है, वस्तु है, ये नाम कहाँ से है? उनकी जो जो विशेषताएं हैं वो विशेषता के ऊपर से ही उसके नाम आते हैं। तो कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ को पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पद या अर्थ, अर्थ हमने जो देखा था ना, हाँ, जो वो द्रव्य गुण पर्याय सहित पूरी वस्तु उसे अर्थ कहते हैं, वो अर्थ की वजह से वो वस्तु को पदार्थ कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं? वस्तुत्व गुण के कारण हरेक द्रव्य में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे जीव द्रव्य में जान्य रूप विशेषता है, उद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, तो वो वस्तुत्व गुण के कारण है, इसलिए वो पदार्थ को ही वस्तु कहते हैं। तो ये संज्ञाएं मतलब ये नाम भी गुण के कारण पड़े हैं।
हे जिन वाणी भारती तोही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा ग्रहे सुख पावे सुख से, जवानी के स्नान से तुझे लोका लो, जो वाणी मस्त करो सदा ये तुम।
बोलो जिन वाणी मात सुन रहे हो,